I don't know about you, but how fast this month has gone. How many know that?
मेरे को नहीं मालूम आपके विषय में, लेकिन ये महीना बहुत जल्दी चला गया. कितने को मालूम है साल जल्दी जा रहा है.
We are 6 months almost finished, and we got another 6 months to go.
और छः महीना गुजर चुका है, छः महीना जाने पे.
How many are thankful to the Lord that you are still alive?
कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप जिंदा हैं, सांस ले रहे
हैं. You know, 6 months, I believe every time when you want to move forward, the enemy doesn't want you to move forward.
और आप कितनों को मालूम है जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं लोग नहीं चाहते, कई बार चीजें रोकती हैं आपको.
And that means it's a good sign that you're moving to right direction.
और इसका एक अच्छा प्रतीक ये है कि आप सही दिशा में.
If you do not have problems in life,
यदि जीवन में आपके पास समस्या नहीं है,
there's no opposition coming in your life.
इसका मतलब आपके जीवन में यदि विरोध नहीं हो रहा है,
that means you're probably in the enemy's territory.
इसका मतलब है कि आप दुश्मन के इलाके में हैं.
And but if you are walking, you know that there always will be an issue.
लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे आपको हर समय मालूम होगा परेशानियों का सबब तो रहेगा.
हालेलुया,
हालेलुया.
How many you are a new creation in Christ Jesus?
कितने लोग प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, नई सृष्टि.
Every day you should become new.
रोज आपको नया बनना है.
His mercies are new every day.
उसकी दया रोज नहीं होती
आती है. I love this new month that's coming up.
और मैं ये नया साल, नया महीना जो आ रहा है, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं.
The next 6 months I'm going to grow more in the Lord.
और आने वाले 6 महीने में प्रभु में और मैं बढ़ूंगा.
I am going to go more persistent.
और आप ये कहिए कि मैं और भी बड़े ध्यान से
बढ़ूंगा. I am going to move further in God.
और भी प्रभु में उन्नति करूंगा.
Amen.
Amen.
If you desire it, then you'll see it happen.
और यदि आपकी ये तमन्ना हो तो आप जरूर आप बढ़ेंगे.
And I want to bring some principles today that will help you to grow.
मैं कुछ ऐसी सिद्धांतों को लाना चाहता हूँ जिससे आप प्रभु में बढ़ सकें.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know, one of the problems I found. How many know that God has a language?
और कितनों को मालूम है कि परमेश्वर के पास एक भाषा है.
God has a love language.
परमेश्वर के पास प्यार की भाषा है.
He has a love language. There are
Yeah. उसके पास में प्यार की भाषा है.
Amen. Amen. God communicates through His love to
परमेश्वर
humanity.
अपने प्यार के द्वारा इंसानों से बात करता है.
Hallelujah.
Amen.
Now, most human also have a love language.
और आमतौर पर इंसानों के पास भी एक भाषा होती है.
We sometime we express our love in different ways.
और कई बार हम अपने प्यार को अलग अलग तरीके से बांटते हैं.
And we also receive love differently.
और हम अलग तरीके से प्यार को पाते भी हैं.
Because we must know how do I understand my love language.
और कैसे हमको समझना पड़ेगा कैसे मैं अपनी प्यार की भाषा को समझता हूँ.
So there are 5 love languages.
तो 5 ऐसी प्रकार की बातें हैं आप अपनी प्यार की भाषा को बोल सकते हैं.
Write this down. This will help.
इन बातों को लिख लीजिए आपकी सहायता करेगा.
There are 5 ways you communicate your love to each other.
5 तरीका है कि आप अपने प्यार को लोगों के साथ बांट सकते हैं, अपने प्यार को बोल सकते हैं.
First one is the word of affirmation.
पहला वो है कि अपने शब्दों का प्रमाणीकरण करना.
So when you say somebody with nice words, they feel loved.
जब आप किसी को अच्छे शब्दों में कहते हैं तो उनको प्यार महसूस होता है.
Okay, sometimes you know when you are nice to human being, the human being, you're loving and they feel good. They feel, man, that person really loves me.
और जब आप किसी के साथ बड़े अच्छे के साथ बात करते हैं, उसको प्यार जताते तो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे प्यार करता है.
The second way you express love is by serving somebody.
और दूसरा प्यार वो है कि आप किसी की सेवा करते हुए अपने प्यार को प्रकट कर सकते हैं.
Especially some wives really like when the husband comes and start cutting some onions, helping in the house.
और पतिदेव का काम बड़ा खुश हो जाता है, खुशगवार हो जाता है जब आके अपने पत्नी की सहायता करता है प्याज काटने में.
Especially when they massage their feet.
और विशेष करके जब पत्नियों का पैर मालिश होती है तब. जो हंस रहे हैं वो बेहतर समझ रहे हैं.
The third way you express love,
तीसरा तरीका है जो आप अपने प्यार को प्रकट करते
हैं, is by receiving gifts.
कि आप जब कोई आपको उपहार देता है,
somebody does buy a shopping gift or nice thing, you feel very loved.
और यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ खरीद के दे, प्यार से तोहफा दे, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है.
How many like receiving gifts?
कितने लोग को अच्छा लगता है कि कोई आपको तोहफा खरीद के दे?
How many feel loved when you get gift?
जब आपको कोई लाके कुछ देता है कैसे लगता है, कैसे कि आपके सही में
आपको प्यार मिला है? How many feel loved when you get somebody speaks nice word to you?
और कोई आपको जब अच्छे शब्द कहते हैं कितनों को प्यार महसूस होता है?
How many you feel loved when somebody does some service for you?
और जब आपके कोई सेवा कर दे तो कितनों को लगता है कि प्यार आपको महसूस होता है उस समय?
And here's the third, fourth way.
यहाँ पे चौथा तरीका है.
Is by spending time, quality time with
others. आप बड़े उत्तम समय किसी के साथ, बेहतर समय किसी के साथ
गुजारें. Some people feel loved just because you were with that person for some time.
और आप किसी के साथ किसी के साथ को समय गुजारे उसको बहुत अच्छा लगता है.
And the last one is by the way you know is by how that person feel up is by physical touch.
और कई बार आपको महसूस होगा जब आप किसी को स्पर्श करते हैं प्यार से तब वो प्यार को महसूस करता है.
Okay, so how many feel loved when somebody gives you a hug then?
कोई व्यक्ति आपको गला लगाए तो आपको लगता है वाओ ये तो प्यार करता है मेरे को.
How many feel? I want to just come on. I want to see the vote here in the church. I want to know why. How do you know? Because then that's the way I will express my love. How many like to get a gift? Lift your hand up.
कितने लोग इस प्रकार का है कि आप अपना.
Oh, that's good. In the church, only 6-7 people love gift. Oh, thank you, Jesus. Save my money. Okay, have a. Okay, that's good. How many of you feel when I give a lot of encouraging word? You feel nice word. That's good. So you don't like to be, okay, you like nice words. Okay, how many of you feel loved when I come and serve you or help you out? That's good. How many feel loved when you really have some time, quality time?
लोग को अच्छा लगेगा कोई आके साथ आपके साथ आके समय बिताएं?
A lot of people want. How many feel like when you know pastor comes to your house and spend time?
कितने लोग चाहते हैं कि पादरी साहब आपके घर में आएं?
Lift your hand. How many want pastor to come to your house? Okay. Just Harun, stand up and just see all these people want house. Okay. So great.
कितनी अच्छी बात है.
Okay. Okay. So we can go anytime in their houses. Oh, good.
हम किसी भी समय आपके घर में आ सकते हैं.
I think it's great. So there are different love languages.
और ये प्यार की जो भाषा होती है ना अलग-अलग होती है.
And I was watching some people were in all that I wanted. All of them I love.
और ऐसा है कि कुछ लोग को मैं देख रहा था हर एक बार मैं बोल रहा तो आप क्या आपको ऐसा प्यार पसंद है हर एक में हाथ उठा रहे थे वे लोग.
And do you know that God is like that?
क्या आपको मालूम है परमेश्वर भी ऐसा ही है.
God has all the 5 love languages.
परमेश्वर के पास पांचों प्यार की भाषा है.
He expresses his love by those all 5 things.
इन तमाम पांच तरीके से वो अपने प्यार को आपके जीवन में प्रकट करता
है. So he's one of the way he feels is this language of his love is when we start giving ourselves to him.
और जब एक उसको अच्छा लगता है जब हम अपने आप को परमेश्वर को देने लगते हैं उसको अच्छा लगता है.
His way of expressing love is also by giving.
और वो भी है उसका भी प्यार करने का तरीका है कि देने के जरिए.
The key verse in the whole Bible is John 3:16.
और जो मुख्य बाइबल की जो बातें हैं वो यूहन्ना 3 उसका 16 है.
And said, for God so loved that he.
उसने कहा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने दे दिया.
So it is his nature in giving.
इसका परमेश्वर का स्वभाव है देना.
And so it's very important for us to understand. Why it is important to give and put God first in our life.
और क्यों ये बात समझना जरूरी है क्यों हम अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दें.
And if you look at through other scriptures, you will see God expressing His love by giving.
आप पाएंगे बाइबल को जब वचन को आप देखेंगे आप पाएंगे परमेश्वर अपने प्यार को देने के द्वारा प्रकट करता है.
And so we are His followers.
So हम उसके अनुयायी हैं.
Then we must also inherit and copy his nature.
So इसलिए हमको हमारे बाप के स्वभाव के अनुसरण करना है.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now turn to your Bibles to book of Exodus, the 13th chapter.
यदि आपके पास बाइबल है तो निर्गमन उसका 13 अध्याय 12 वचन से हम खोलेंगे.
And in verse 1 it says, and how God spoke to Moses, and this is what the Lord said to Moses.
और पहला वचन में लिखा है तब परमेश्वर ने मूसा से बातें की.
And he said, consecrate to me all the firstborn.
और कहता है कि जो पहलौठा है मेरे सामने अर्पण कर दो.
Say with me together, firstborn.
पहला पहलौठा.
Whatever is first.
पहला चीज जो कुछ भी है.
It opens the womb among the people of Israel, both of man and beast, is mine.
सुनिएगा, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान में से हो, पहलौठा तो यहोवा का है.
It's very strong in the Greek or Hebrew word. It says. It is mine. It means basically it belongs to me.
और इब्रानी शब्द में उसका मूल अर्थ ये होता है कि जो पहलौठा है वो तो मेरा है.
It is my property.
ये मेरी संपत्ति है.
Now go look at verse 12.
12वां वचन को देखिएगा.
Same chapter.
इब्रानी उसका 13.
And you shall set apart to the Lord all the first opens the womb.
और ऐसा है कि जो गर्भ का पहला फल जो है परमेश्वर कहता है वो मेरा है.
And all the firstborn of the animals that are male shall be the Lord's.
और लिखा है जो पहला जो जानवर का जो भी संतान हो जब पहला होता है वो तो परमेश्वर यहोवा का होता था.
And verse 13 says.
तेरा वचन कहता
every firstborn
हर एक पहलौठा
of donkey
या गधे का
You shall redeem it with the lamb.
Tu usko jameen deke chhuda lena.
And if you will not, if you do not redeem it, you should break the neck.
Yadi tu usko na chhudana chahe to bhed ko tod dena, maar dena.
Every firstborn of man,
har ek pehlota jo insaan ka ho,
belongs to your belongs among your sons shall be redeemed.
Aur tumhare beech mein usko chhudon ke le lena.
Hallelujah.
Hallelujah.
Three principles. Write this down. Number one.
Siddhant hai, likh lijiye.
The first principle.
Pehla siddhant.
The firstborn.
Pehla jo pehla uta hai.
Must be sacrificed.
Usko zaruri hai ki balidan kiya jaye.
Or redeemed.
Ya to chhudaya jaye.
Let's say together.
Ek saath boliyega.
The firstborn.
Pehla uta.
Must be sacrificed.
Zaruri hai ki balidan kiya jaye.
And must be redeemed.
Or chhudaya jaye.
How do we know what he really says?
कैसे हम कह सकते हैं पहचान सकते हैं?
What do we sacrifice? What do we redeem?
हम क्या चीज को छुड़ाते हैं और किस चीज को बलिदान करते हैं?
It talks about in the previous verse. It talks about how the first there's a donkey and a lamb.
ये बोलता है यदि गधा हो या तो भेड़ हो.
So in the Bible, whenever the lamb comes, it's a holy thing.
और जब वो जब कभी बातें होता है भेड़ के विषय में तो वो पवित्र विषय होता
है. It is a clean animal.
ये बिल्कुल शुद्ध जानवर है.
So what God said, Moses, whenever there is a first lamb that is born in your property, in your house.
और जब कभी आपके संपत्ति में पहला मेमना पैदा हो,
that supposed to be sacrificed.
और उसका जरूरी है कि वो बलिदान किया जाए.
And if this is a donkey in your house and gives a birth to a first donkey.
और यदि गधा है आपके घर में और यदि गधा बच्चा दे,
then you will have to redeem it. That means you got to get the donkey to somebody else and get a lamb exchange of it.
और ऐसा है कि आपको उस गधे का अदला बदली करना पड़ेगा.
Or otherwise break the neck of the donkey.
या तो आप उस गधे के गर्दन को तोड़ डालें.
So this is what God was saying.
ये बात को परमेश्वर कह रहा था.
I said, why is God saying that you have to sacrifice the first one?
क्यों परमेश्वर कह रहा है कि पहलोटे को तुम बलिदान करके चढ़ाओ?
Why does God want first thing?
क्यों परमेश्वर चीज पहलोटे को चाहता है?
Because he was putting a foundation into the life of every believer to understand how God has to be first in your life.
और परमेश्वर एक नींव को डालना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में सर्वप्रथम हो.
God was giving the principle of how to live a successful life and how to be blessed life.
कैसे परमेश्वर इस बात को सिखा रहा था कैसे आप कामयाब और अच्छी जिंदगी जी सकें.
He said to the people of Israelite, everything that you born is a sin.
और याद रखिए जो कुछ भी कहता है पाप में है वो जन्मा है, वो पाप में जन्मा है.
Amen. Every human being that is born in this earth is sinner.
और हर एक इंसान जो पैदा होता है वो पापी है.
And so because is a sinner, it is unclean.
सुनिए, इसलिए कि वो पापी है वो अशुद्ध है.
So anything that's unclean cannot be offered to God.
सुनिए, जो भी चीज अशुद्ध है वो परमेश्वर को आप दे नहीं सकते.
You can't give the first unclean animal to God.
आप परमेश्वर को पहला और शुद्ध परमेश्वर को नहीं दे सकते.
It has to be redeemed.
जरूरी है कि वो छुड़ाया जाए.
And man cannot do that.
और इंसान नहीं कर सकता.
That's why God had to come in this earth.
इसलिए परमेश्वर को दुनिया में आना पड़ा.
So when Jesus was born,
जब यीशु पैदा हुआ,
was he clean or unclean?
क्या वो शुद्ध था कि अशुद्ध था?
He was clean.
वो शुद्ध था.
In him there was no sin.
उसके अंदर में पाप नहीं थी.
And therefore he has to be offered on the cross of Calvary.
इसलिए क्रूस के ऊपर में उसको बलिदान चढ़ाने की जरूरत थी.
Because God had to offer that to redeem humanity.
ताकि परमेश्वर ने उसको दिया बलिदान के तौर पे ताकि इंसान छुड़ाए जाए.
Because the unclean to redeem the unclean, he had some clean has to die so the unclean can become
clean. सुनिए, अशुद्धता को छुड़ाने के लिए शुद्धता देना पड़ती है ताकि उसको छुड़ाया जाए.
Hallelujah.
Hallelujah.
So every time when God commanded this law,
एक बार जब परमेश्वर ने इस सिद्धांत को पेश किया,
he was teaching the people of Israel some very important principles.
इस्राएलियों को, बच्चों को कुछ बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत को सिखा रहा था.
He was saying, son,
वो कह रहा था बेटा,
always offer the first thing.
हर समय पहलोटे को देना.
Now he was teaching them to trust God.
और वो कह रहा था कि मेरे पर भरोसा करना.
Now think about a person who has a business of farming.
मान लीजिए उसके
of sheep farming.
मान लीजिए एक व्यक्ति के पास में बहुत सारे भेड़ बकरियां हो.
And every sheep that gives the first birth.
और हर एक भेड़ जो पहला बच्चे को पैदा करे.
Has to be sacrificed.
जरूरी है कि वो बलिदान चढ़ाया जाए.
And it has to be sacrificed immediately.
और ये जरूरी है कि तुरंत बलिदान चढ़ाया जाए.
It's not okay. He wait for 10 more sheep to come, then I will give the left.
No, ऐसा नहीं कि 10 बच्चे और पैदा हो जाए तब मैं दूंगा.
Now God said, when it happens,
परमेश्वर कहता जब हुआ,
then you must offer it.
तभी देना है.
That was what God was teaching people of Israel.
परमेश्वर लोगों को सिखा क्या रहा था?
Was teaching the principle of tithing.
सिद्धांत दे रहा था सिखान दशमांश देने का.
He was teaching them to put God first.
पर बता रहा था कि परमेश्वर को पहला स्थान दो.
He said, you know, Lord, I meet a lot of people, Pastor, I can't tithe.
और कई लोग से मैंने मुलाकात किया, लोग कह रहे पासवान मैं दशमांश नहीं दे सकता.
I cannot afford to tithe.
मैं दे नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं है.
Let me tell you, you will never be able to afford.
सुनिएगा, आप कभी भी दे नहीं पाएंगे.
Because the problem in this world is we are putting the world system first, then God's system.
और दुनिया की यहाँ की समस्या ये हो गई कि हम दुनिया के तौर तरीके को पहला देते हैं, प्रभु के तरीके को नहीं.
I have grown up in a home where I saw this tithing principle work.
मैं अपने ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पे मैंने इस सिद्धांत को देखा था.
So I was a first child.
मैं पहला बेटा था.
They dedicated me to child.
उन्होंने मुझे प्रभु की सेवा में दे दिया.
They said, son.
उन्होंने कहा बेटा.
You're a first male child.
तू पहला बेटा है.
You will serve God.
तू प्रभु की सेवा करेगा.
And so they kept dedicating it. They reminded me that I was dedicated.
मुझको हर समय याद दिलाते रहे तू पहलौटा है, तुझे सेवा करना है.
Amen.
Amen.
So that principle.
वो जो सिद्धांत था.
Giving what was God.
जो परमेश्वर का था उसको देना है.
Brought blessings in their life.
उनके जीवन में आशीष को लेके.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now God told people of Israelite.
Israelites के लोगों के बारे में क्या है?
Is that it is important that you learn to put me first.
और इस्राएलियों के लिए ये था कि सीखो मुझे पहला स्थान दे सको.
See, when you don't put God first,
जब आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते,
you're giving God second one.
तब आप परमेश्वर को दूसरा स्थान दे रहे
हैं. Let me tell you, God can never become second.
सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर कभी दूसरा स्थान पाएगा ही नहीं.
He can never take a second place in life.
कभी भी वो आपके जीवन में दूसरा स्थान लेना नहीं
चाहेगा. When a believer puts God in second place,
जब विश्वासी लोग परमेश्वर को दूसरा स्थान देते
in his time,
उसके समय में,
in his wealth,
अपने संपत्ति,
in his resources,
अपने सरियों में,
I guarantee that person will never be blessed.
मैं आपसे गारंटी देके कहता हूँ ऐसा व्यक्ति कभी आशीषित नहीं
होगा. Why? Because you're bringing unclean offering to God.
क्योंकि आप परमेश्वर के पास में अशुद्ध बलि चढ़ा रहे हैं.
And God is despised by that.
और परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता.
He gets dishonored by that.
वो परमेश्वर का अनादर होता है.
Hallelujah.
Hallelujah.
That's why we must learn to put God first.
इसलिए हमें सीखना है कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें हमारे जीवन में हर एक
बात. We must learn to put God first.
हमें सीखना है कि प्रभु को हम पहला स्थान दें.
My first word,
मेरा पहला शब्द.
My first thought,
मेरा पहला विचार.
My first gratitude,
मेरा पहला धन्यवाद.
Should be to
परमेश्वर का होना चाहिए.
Hallelujah.
Hallelujah.
And when God is first,
और जब परमेश्वर पहला है,
in the life of a person,
इंसान के जीवन में,
you will never be the second.
आप कभी दूसरा स्थान
नहीं. Because God wants to bless you.
क्योंकि प्रभु आपको आशीष देगा.
Hallelujah.
Hallelujah.
So God told the people of Israel.
परमेश्वर ने इस्राएलियों के
संतान से कहा, I want you to make sure that you bring the first portion.
मैं चाहता हूं कि जो पहलौटा हो तुम उसको लेके आओ.
That you must bring the first as sacrifice it before me.
ताकि तुम पहला बलिदान को मेरे सामने में लेके आओ.
Hallelujah.
Hallelujah.
You know in book of Malachi.
आपको जानते हैं मलाकी के पुस्तक.
We look at always about how God tells us bring to tithe.
और परमेश्वर हर समय हम ये देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम दशमांश को लाएं.
Let's open the scripture.
आइए हम
मलाकी chapter chapter 3.
मलाकी तीन अध्याय
8, 9 and 10.
8, 9 and 10.
He said, "Will a man rob God?"
वो कहता है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है?
And but you say, how have we robbed?
और कैसे हम पूछते हैं हमने कैसे आपको धोखा दिया?
He said, in tithes and in offerings.
और वो कहता है दशमांश और भेंट में उठाने में.
Remember, there are two different things.
दो अलग-अलग बातें हैं.
Tithes,
दशमांश,
and offerings.
और भेंट है.
Tithe belongs to God.
सुनिएगा, दशमांश जो प्रभु का है.
Offering is your free will.
ऑफरिंग जो होता है आप अपने स्वेच्छा से देते हैं.
Tithe you never give.
सुनिए, आप दशमांश नहीं देते.
You return.
आप प्रभु को जो प्रभु ने दिया आप वापस करते हो.
Look at next verse. Why it is? Because it says bring verse 8 and verse 9 goes on. Yeah. And you're cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Now, remember, it is not God cursing. He said, you are bringing curse on your own self.
परमेश्वर श्राप नहीं दे रहा इसलिए कि तुम देते नहीं हो बोल के श्राप दे रहा है और ऐसे करके सारी जातियां इसी कर रही है लिखा है
बोलता है you are cursed because you are bringing curse by not doing it.
सुनिए आप नहीं करते हैं इसकी वजह से आप अपने जीवन में श्राप
ला रहे हैं. Look at verse 10. Verse 10.
दसवें वचन को देखिए.
It says, this is what I want you to focus on. Verse 10 says, bring. He says, bring.
वो कहता है लेके आओ.
What do you say?
क्या कहता है?
It doesn't say give. What does it say?
वो कहता है
bring. What does it? You cannot bring something if it is not he doesn't own it.
यदि आपका कुछ है नहीं तो आप लाएंगे कैसे?
Let's just say I gave something. I said bring my pen.
और ऐसा है कि मैं कुछ दूँ और बोलूँ वापस phone. Pen लाओ मुझे phone लाओ.
Because it was given to you.
इसलिए कि दिया गया.
You got to give it back to me.
आपको वापस मुझे देना है.
So the entire God is saying.
जो दशमांश में प्रभु कहता है.
The money that you give.
जो पैसा तुम्हारे पास में है.
You didn't made it beyond strength.
अपने बल से तुमने नहीं
कमाया. You think you are smart with your mind?
तुम सोचते अपने दिमाग से.
You think you are a muscle power?
तुम सोचते तुम्हारे.
You think with your mind you became successful?
तुम सोचते तुम्हारे दिमाग से कामयाब बन गए.
Do you know that I control the whole body?
आपको मालूम है मैं पूरे शरीर
को. I am the one who gives us strength.
मैं बल देता.
I made you.
मैं तुमको बनाया.
And I give you the power to create wealth.
मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं कि
संपत्ति कमाओ. Now that wealth belongs all 100% is mine.
और वो 100% मेरा है.
It's all mine.
वो मेरा है.
In fact, you are also mine.
तुम भी मेरे हो.
You don't own anything in life. You are mine.
तुम मेरे हो.
I am and I am yours.
और मैं तुम्हारा हूँ.
And because you are my child,
इसलिए कि तुम मेरे
you are my son. Everything that you have is mine.
जो कुछ भी तुम्हारा है वो मेरा है.
So now I give you the authority.
अब मैं तुमको अधिकार देता हूँ.
And I give you a commandment.
और आज्ञा भी देता हूँ.
It's first that you bring your tenth to me.
पहला चीज़ की दशमांश लेके आओ.
When you bring the tenth to me,
जब दशमांश लाओगे,
then the 90 I'm going to bless you.
और तब मैं 90 में आशीष दूंगा.
And see how I can make the 90 grow and multiply it.
और देखो मैं 90% को कैसे बढ़ाऊंगा कि वो आशीषित हो सके.
When I put God first,
जब मैं परमेश्वर को पहला स्थान देता हूँ,
I see the breakthrough taking
मैं
place.
मैं परमेश्वर के जीवन में आशीषों को देखता
हूँ. Now I can do with my own strength, my wisdom.
मैं अपने बल से सब कुछ कर सकता हूँ.
I don't have to do that.
मुझे करने की जरूरत नहीं.
But then God says, if you do that,
परमेश्वर कहता है ऐसे करोगे,
then you're bringing curse in your life.
तो मैं अपने जीवन में श्राप
को लाती हूँ. Look at verse 11. He says, in
ग्यारह वचन में लिखा
है. He says, and I will rebuke the devourer.
और कहता है मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा.
How many like God rebuking for your enemy?
कितने लोग पसंद करेंगे कि परमेश्वर नाश करने वाले को.
You don't have to say in Jesus name get out. God will do it for you.
सुनिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ परमेश्वर खुद घुड़केगा.
I love it. He says that and I'll rebuke the devourer.
और तब कहता मैं नाश करने वालों को घुड़कूंगा.
And it will not destroy the fruits of your soil.
और तुम्हारे फलों को और तुम्हारे बीज को नाश नहीं करेंगे.
How many you want your children not to be?
कितने लोग चाहते हैं कि आपके संतान
आशीष ऑफ योर लाइफ इज योर चिल्ड्रन.
जरूर जो फल है वो आपके संतान.
He said, I will take care of your children.
वो कहता मैं तुम्हारे बच्चों को संभालूंगा.
I will and I'll bless your vineyards.
मैं तुम्हारे दाग की बारी को आशीष दूंगा.
Hallelujah. Look at it. It goes on and it gives you. And then verse 12 says, and all the nation will call you blessed.
और सारे देश के लोग तुमको आशीषित कहेंगे.
Hallelujah.
Hallelujah.
And you will be a delightful land.
और तुम एक फलदायक आशीषित होगे.
Hallelujah. How many want to be in that place?
कितने लोग उस जगह में रहना चाहते हैं?
I want ICL. See every believer in this house.
मैं चाहता हूँ कि ICL के हर एक विश्वासी लोग
come in that place.
इस जगह पे आएं.
We are a blessed land.
जहाँ पे एक धन्य, एक आशीषित जगह हो.
That we are a delightful land.
जहाँ प्रभु के लिए आनंदित हो.
Where we are all other people are saying they are blessed people.
ताकि दूसरे लोग कह सके हम आशीषित हैं.
Hallelujah.
Hallelujah.
And you know these only words where God said test me in this.
और यहाँ पे एक ही वचन कहता है ऐसा करके देखो.
In verse 10 said test me in this.
और वो कहता है ऐसा करके देखो.
I will open the windows of heaven.
मैं आकाश के झरोखे खोलूंगा.
And I'll bless you so much.
और तुम्हें इतनी आशीष दूंगा.
That you will have no room to.
कि तुम्हारे पास जगह नहीं होगी रखने के लिए.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. How many you want your house to be filled with abundance of God?
कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर आशीषों से भरा हो?
Then not with the $2 shop stuff. You want things filled with blessings of God.
आप चाहते हैं कि आपके घर में आशीष भरा हो?
Hallelujah.
Amen.
Number two.
दूसरी बात.
Write this principle.
लिख लीजिए इन सिद्धांतों.
The first fruit.
पहला जो फल है.
Must be offered.
परमेश्वर को देना जरूरी है.
The first fruit.
पहला फल है देना जरूरी है.
In Proverbs chapter 3 verse 9 says,
नीति वचन 3:9 में लिखा है,
Honor the Lord with your wealth,
अपनी संपत्ति के द्वारा
and with the first fruit of your produce.
और उसके पहले फलों के द्वारा और पहली संपत्ति के द्वारा यहोवा की प्रतिष्ठा करना.
Exodus 23:19.
और निर्गमन उसका 23 उसका 19 में लिखा है.
The best of first fruit of your ground shall bring into the house of the Lord.
जो तुम्हारी जमीन के पहला अच्छा उत्तम फल हो परमेश्वर के भवन में लेके आना.
You shall not boil it with young goat and the mother's milk.
और तुम उसको उबालना नहीं.
But you should bring it into the God's
लेकिन
house.
लेकिन तुम परमेश्वर के घर में लेके आना.
Hallelujah.
Hallelujah.
Again, it says bringing into God's house.
और कहता है प्रभु के घर में लेके आना.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now, when God told the people of Israelite,
जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के बच्चों से कहा,
He took them out of the bondage.
उनको जब बंधुआई से निकाला,
took them to the promised land.
उनको वायदे के देश में लेके गया.
The first city they came to.
पहला शहर जो वो आए.
The city of Jericho.
वो जेरिको का शहर.
He said, I want you to take this city.
अब प्रभु ने कहा, इस शहर को ले लो.
And every gold and silver and bronze and iron should be brought into my house.
सोने चांदी तांबे सब कुछ मेरे भवन में लेके
आना. But everything else should be burned.
बाकी सब चीजों को जला डालना.
Nobody is allowed to take it.
कोई व्यक्ति इजाजत नहीं उसको ले.
No soldier can take it.
कोई सिपाही ले नहीं सकता.
All of that has to be burned.
सब चीज को जला दिया जाना है.
And the Bible tells in book of number chapter 6 of Joshua.
और यहोशू 6 अध्याय में लिखा हुआ है.
Read the story, you will find there was a guy named Achan.
और आप उस कहानी को पढ़ेंगे, अकान नाम का व्यक्ति था.
He went and he took things and he hid himself.
उसने एक सोने को लेके ईंटे को लेके अपनी जगह पे तंबू में छिपा लिया.
And because of that, the judgment of God came.
और उसकी वजह से परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर में आया.
And the whole, not only him, but the whole family along with killed.
लेकिन सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा परिवार को पथरवा करके मार
डाला. What was God teaching the people of Israel?
परमेश्वर के लोगों को क्या सिखा रहा
था? He said, I'm going to give you many cities.
वो कहता, मैं तुमको बहुत शहर दूंगा.
I'm going to give you the land.
मैं जमीन दूंगा.
I'm going to give you great future.
मैं भविष्य दूंगा.
I've taken you out of bondage.
मैं तुमको बंधुआई से.
But I want you to learn.
लेकिन मैं चाहता हूं
सीखो. I want to teach you to trust me.
मैं सिखाता हूं, सिखाना चाहता हूं.
When you come to the first city,
जब तुम पहले शहर में आओ,
burn that whole city.
सारी सिटी को जला देना.
Burn it for me.
मेरे लिए जलाना.
When you burn that,
जब जलाओगे,
that will be the offering to me.
और वो मेरे लिए बलिदान के
तौर पे. And then after that, every other city is.
और उसके बाद सब शहरों को मैं आशीष दूंगा.
And God gave the people of the cities and nations and nations after.
परमेश्वर उसके बाद शहर और देश और जगह देते गए.
And gave 10, 15 kingdoms.
और 10-15 राज्य भी दिया.
Why? Because they obeyed God.
इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना.
You know, a lot of people don't understand why God accepted the Abel's offering.
और कई लोग नहीं समझ पाते परमेश्वर ने हाबिल के बलिदान को क्यों ग्रहण किया था.
You know why?
आपको मालूम
है? Book of Acts. Book of Exodus.
निर्गमन.
And chapter 4.
उसका 4 अध्याय.
And verse 3.
3 को पढ़ेंगे.
Let me tell you. In the course of time.
उस समय के अंतराल में.
Cain brought to the Lord an offering.
और कैन ने परमेश्वर के सामने बलिदान को लेके आया.
First, he said the fruit of the ground.
और कहता है जमीन के पहला फल को लेके आया.
No, Cain did not bring that.
उसको नहीं लाया.
He just brought a fruit of the land.
उसने उस जमीन के फल को लाया.
But look at verse 4.
लेकिन चौथा वचन को देखेंगे.
And Abel also brought.
और हाबिल भी लेके आया.
Of the first fruit of the flock.
जो उसके भेड़ था उसका पहलौठे को लेके आया हाबिल.
And the verse 5 says.
और पांचवा वचन कहता
है. And the Lord accepted or regarded or respected the Abel's offering.
और तब बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हाबिल के जो बलिदान था उसको ग्रहण किया.
But Cain's offering he did not respect.
लेकिन कैन का उसने ग्रहण नहीं किया.
So Cain became very angry.
और तब कैन बड़ा गुस्सा हो गया.
Hallelujah. Two people.
दो लोग.
Both brought offerings.
दोनों ने बलिदान को
लाया. One accepts.
एक ग्रहण किया गया.
The other one rejected.
दूसरा का ग्रहण नहीं किया
गया. Why?
क्यों ऐसा हुआ?
Because the one who gave,
क्योंकि जो दिया था,
he gave with the wrong spirit.
वो गलत आत्मा से दिया था.
He gave the leftover.
और जो बचा हुआ उसको दिया.
He gave whenever he got time.
और जब उसके पास समय था दिया.
Whenever he feel like giving.
जब महसूस करना था
But the
देना
other
है,
guy,
दे दिया. लेकिन दूसरा जो था,
he put it God first.
उसने पहला स्थान परमेश्वर को
he
दिया.
He took the first thing.
उसने पहला चीज
को
लिया.
The first land that came.
पहला चीज को लाया.
He said, God, this is yours.
उसने कहा परमेश्वर ये आपका है.
And God accepted.
और तब प्रभु ने उसको ग्रहण किया.
I believe as a believer.
मैं विश्वास करता हूँ विश्वासी होने के
you नाते. You have to learn to put God first.
आपको सीखना है कि परमेश्वर को आप पहला स्थान दें.
There are certain things God cannot do.
कुछ कुछ ऐसी चीज जो प्रभु नहीं कर सकता.
नंबर वन,
पहला चीज,
गॉड कैन नॉट लाई,
परमेश्वर झूठ नहीं बोलता.
टू,
दूसरा चीज,
गॉड कैन नॉट चेंज,
परमेश्वर बदलता नहीं.
नंबर थ्री,
तीसरी बात,
गॉड कैन नॉट cannot change his words.
परमेश्वर अपने शब्दों को नहीं बदलता.
And number very, God cannot be second.
और दूसरा ये है कि परमेश्वर को आप दूसरा स्थान नहीं दे सकते.
You cannot put God second.
आप परमेश्वर को दूसरा स्थान नहीं दे सकते.
Do you know God does not think the way you think. God doesn't think.
परमेश्वर वैसा नहीं सोचता.
He doesn't think the way you think.
जैसे आप सोचते हैं वैसा वो नहीं सोचता.
God never has, even though God is sovereign.
परमेश्वर सर्वज्ञानी सर्व सामर्थ्य प्रभु
है. He knows what the problem. For him, there's no problem that's ahead.
सुनिए, उसके लिए कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जो उसको वो संभाल ना सके.
So if you're his child,
यदि आप उसके संतान हैं,
God, I only got $500.
और आप बोलिए प्रभु मेरे पास सिर्फ $500 हैं.
And my rent is 500.
और मेरा रेंट 500 है.
How can I give you the child?
कैसे मैं आपको दूंगा दस मांस?
You know what God will say?
प्रभु आपसे क्या कहेगा मालूम है?
He said, son, if you can bring the tithe of that.
यदि बेटा तुम उसका दशमांश से दिलाओ.
So you only got 450 left.
तुम्हारे पास सिर्फ $450 बचा.
How would you leave the rest of the 450?
450 कैसे क्या करोगे?
How many believe that God can multiply that and make it grow?
कितने लोग विश्वास करते कि प्रभु उसको बढ़ा सकता है?
Because it requires faith.
क्योंकि विश्वास की जरूरत है.
Now what happens with most believers?
आम विश्वासियों के साथ क्या होता
we
है?
We use this with our wisdom.
हम अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं.
And we're trying to work this out with our mind.
हम अपने दिमाग से इसमें काम करते हैं.
Rather than believing God in our spirit.
हम परमेश्वर के आत्मा के पर विश्वास नहीं करते.
That God will make a way
for us. कि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को निकाल सकता है.
I can tell you many stories in our life.
मैं अपने जीवन में कई कहानियों को बोल सकता हूँ.
I lived in a very, I didn't start, when we started, we had a very low salary.
और जब हमने शुरुआत की, हमारे बहुत कम तनखे थे.
Alice and I started with a very low salary.
और भाई ने और सिस्टर एलिस ने शुरू किया बहुत कम.
For many years, I lived very low salary.
कई साल तक उस छोटे से तनखा.
Even moving here, we lived under, below our incomes.
और हम अपने तनखा के नीचे रहते थे.
But one thing I told you, I tell you.
एक बात मैं कहता हूँ.
I never stopped my faith.
मैंने अपने विश्वास को नहीं रोका.
I never stopped my giving.
मैं देना नहीं छोड़ा.
I kept sowing.
मैं बोता रहा.
I kept believing.
विश्वास करता
that
रहा.
God will take care.
प्रभु संभाल लेगा.
And God always made a way.
और परमेश्वर हर समय मार्ग.
There was not a single day we had
एक lack. ऐसा भी दिन नहीं रहा जहां कमी हो.
God always took care of.
परमेश्वर ने हर समय हमारी
सुधि. Because the Bible says.
क्योंकि बाइबल में लिखा है.
The young lion will lack.
जवान शेरों को घटी हो जाएगी.
Those who fear the Lord.
और जो प्रभु का भय मानते हैं.
Those who obey His commands.
जो उसकी आज्ञाओं को मानते
हैं. Those who follow His ways.
जो उसके मार्ग में चलते हैं.
Will lack no good thing.
किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी.
Hallelujah. This is not my word.
ये मेरे शब्द नहीं है.
It is the word of the Lord.
ये प्रभु यीशु के शब्द
हैं. And he says, trust me in this.
वो कहता है मेरे पर भरोसा करो.
ICLC believers.
ICIC के विश्वासियों.
Those who are watching me online.
जो मुझे लाइन में देख रहे हैं.
Let me tell you.
मैं आपसे कहता हूँ.
Become faithful in your giving.
विश्वासयोग्य बनिए अपने देने में.
Be faithful in your tithing.
अपने दशमांश में विश्वासयोग्य बनिए.
Because if you don't.
नहीं बनेंगे.
You are stealing from God's
share. आप प्रभु से चोरी कर रहे हैं.
And you're opening yourself to the judgment
अपने
of God.
आप को विनाश की ओर खोल रहे हैं.
You say, Pastor, you're becoming very legalistic.
आप कह रहे पाई साहब बड़े कानूनी तौर पे बात कर रहे हो आप.
Let me tell you.
मैं आपसे कहूं.
Tithing is never in Old Testament.
सुनिए.
It's not a New Testament law.
ये नया नियम नया नियम
Testament,
तो नहीं है.
It's not an Old Testament thing.
पुराने चीज का नहीं है.
4,000 years before.
4,000 साल पहले.
Cain offered an offering before the Lord.
कैन ने प्रभु के सामने बलिदान दिया.
Abel brought the first fruit, first fruit.
हाबिल ने पहला फल को लेके आया.
This is before when the creation took place.
इससे पहले सृष्टि बनी थी उससे पहले.
Abraham. Before Moses came.
इससे पहले कि मूसा आया.
He brought and he offered.
430 साल पहले अब्राहम ने बलिदान को लाया था.
To the Melchizedek.
Melchizedek के सामने में.
ये Jacob.
याकूब.
He offered.
उसने
400 years before,
400 साल पहले,
he offered tithe before.
उसने प्रभु के सामने बलिदान को दिया.
सभी पसे पास्टर, New Testament doesn't tell us a tithing.
और कई लोग बोलते हैं पाई साहब नया नियम तो नहीं बोलता दशमांश उसमांश दो बोलते.
Jesus never said about tithing.
यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला देने के बारे में.
I love it when they don't read the Bible well and they look at Matthew chapter 23.
मत्ती उसका 22 को देखेंगे. 23, 23. मत्ती 23:23 बोलता है,
Jesus said you ought to tithe. अलग
ही यीशु मसीह कहता है तुम्हें दशमांश देना चाहिए.
Look at this.
देखिए
you should tithe.
तुमको दशमांश देना चाहिए.
English Bible.
अंग्रेजी बाइबल में.
You should tithe.
वो कहता है तुमको दशमांश देना है.
It's not me saying it.
वो नहीं कह रहे हैं.
It's in the Bible.
बाइबल कहती
है. Read your Bible properly.
बाइबल को ठीक से पढ़िए.
Book of Hebrews.
इब्रानी.
Chapter 7.
उसका 7 अध्याय.
The whole chapter.
पूरा अध्याय.
Talks about giving.
देने के बारे में बात करता है. दशमांश के बारे में.
Go and read the Bible.
बाइबल को पढ़िए भाई.
How they offered tithe. How Jesus received. Do you know Jesus receives your tithe?
कैसे यीशु आपके ग्रहण को करता है
दशमांश? When you bring your offering, Jesus receives the
tithe. जब आप लेके आते दशमांश, यीशु ग्रहण करता है.
Hallelujah.
Hallelujah.
So it's very important to understand the tithe must be brought into the house of the Lord.
ये बहुत जरूरी है कि आप समझे कि दशमांश प्रभु के घर में लाया जाए.
Tithe must be practiced in every believer's life.
हर एक विश्वासी के जीवन में इसका उपयोग होना चाहिए.
If you want to be blessed,
यदि आप आशीषित होना चाहते हैं,
you want to grow,
यदि आप बढ़ना चाहते हैं,
you will see that happens.
आप इसको देखेंगे बढ़ते हुए.
Now, one other thing in the church here, I always see people that are struggling.
एक बात को मैं चर्च में देखता हूं कि लोग जूझते हैं उसमें.
Those who are struggling, those who are saying, if you look at the history, they are tithers, but they are not faithful tithers.
सुनिएगा, जो अपने जीवन में कश्मकश में रहते हैं, बोलते हैं ना, बड़ा मुश्किल जा रहा है, वो देने वाले तो हैं, लेकिन निरंतर नहीं देते.
They have no consistency in faithfulness and honesty in the giving.
देने के मामले में विश्वास योग्य और स्थिरता नहीं पाया जाता.
Turn to Book of Leviticus chapter 27.
लेवी व्यवस्था उसका 27 अध्याय को
खोलिएगा. And verse 30.
उसका 30 वचन.
Every tithe of the land.
हर एक जमीन का.
Whether of the seed of the land and the fruit of the tree.
जहाँ पे भी जमीन के गिरा हुआ बीज हो, पेड़ का फल हो.
It is of the Lord.
ये प्रभु का है.
And it is holy unto the Lord.
और ये प्रभु के लिए पवित्र है.
And all the tithes of the land.
और सारे जो आपका भेंट है.
It is a holy unto the Lord.
वो प्रभु के लिए पवित्र है.
Hallelujah.
Hallelujah.
So everything that is of the first portion of God.
जो कुछ भी पहला चीज है आपके जीवन का.
What is it? It is what did God calls it? It is calls it what?
परमेश्वर क्या बोलता है? पवित्र कहता है.
So God gives you a seed of holiness in your
life. सुनिए, परमेश्वर आपके जीवन में पवित्रता का बीज को देता है.
He's given you the holiness.
वो पवित्रता को देता है.
He said, "Son, if you bring it before the Lord."
वो कहता है, बेटा, यदि परमेश्वर के सामने तुम ले
आओ. The 90% will become sanctified.
90% शुद्ध हो जाएगा.
90% will be blessed.
90%
My hand will be on that.
मेरा हाथ उसके पर में होगा.
And I will make sure that everything is taken care.
और मैं निश्चित करूंगा कि सब चीजों का देखभाल की जाए.
So many times what we do is we put our first mortgage as a priority.
पहला हम प्राथमिकता क्या करते हैं, जो हमें देना होता है ना, पहले उसको हम प्राथमिकता देते हैं.
So we put our mortgage first because
पहले mortgage जो होता है घर का देना दाना वो पहले देखते हैं.
And one day God said, "Do you think the Bank of New Zealand can bless you?"
क्या आप सोचते हैं न्यूजीलैंड का बैंक आपको आशीषित करेगा?
BNZ cannot bless you.
अरे भाई नहीं दे सकता, NZ नहीं कर सकता.
You need to understand that your first portion must come in God's.
सुनिए, पहले बात आपको समझना, पहला पहलोटा तो घर में आना है.
See, in the old days we used to have a check. We used to write checks. Now those of you don't know what check is.
पहले दिनों में हम चेक लिखते थे, आप में से कईयों को पता ही नहीं चेक क्या है.
So I used to write the first thing I'll do is first check I will write always about tithe.
और हर समय मेरा पहला चेक होता था दशमांश.
So that was a big, you know, like, man, this is going out.
और मैं बोला जा रहा है यार, लंबा जा रहा है, बड़ा जा रहा है.
But I always knew if I put God first, God will take care.
लेकिन मैं जानता था यदि मैं प्रभु को पहले दूं, प्रभु सब चीज को संभाल लेगा.
Hallelujah.
Hallelujah.
And so when I bring first thing to the Lord,
जब मैं पहला चीज प्रभु के सामने में लाता
हूं, God is able to bless the rest.
परमेश्वर बाकी चीजों को आशीषित कर सकता
है. Hallelujah. How many believe God can bless your rest?
कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु दे सकता
है? Now, so Pastor, I don't know it can be done or not.
और आप बोलेंगे भाई साहब मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा.
Well, this is why he said test me.
और इसलिए बाइबल तो कहती परख के देखो.
I tell people you do it for next 6 months and see what happens.
और मैं लोगों से कहता हूँ पहले तुम 6 महीना करके देखो, देखो
consistently follow.
निरंतर उसके पीछे चले.
And see if the areas of life not changing.
और आप देखेंगे चीजें बदलेगी.
If things are not changing in your
home, यदि चीजें आपके घर में ना बदले,
stop it.
बंद कर दीजिएगा.
Stop believing the Bible.
बाइबल के पर विश्वास करना बंद कर दीजिए.
Because God is lying then.
क्योंकि परमेश्वर झूठ बोल रहा है.
Amen.
Amen.
So test it.
Now,
growing up, one thing I remember in my home when we were small.
जब मैं छोटा था मैं एक बात को याद करता
हूँ. In India, we get a monthly salary.
भारत में हमें महीने में तनख्वाह मिलती
थी. So you they used to get cash in those days.
उन दिनों में कैश मिलता था.
So they will keep it in a safe.
उनको सेफ में रखते थे.
And then they will open up next day because the different dates the salary will come and they'll put it before the Lord.
और वो अलग-अलग दिन तनख्वाह आता था फिर उसको लाके प्रभु के सामने रखते थे.
So we would have in our bedroom we'll place everything and the family will come we'll kneel down and pray.
और उस समय बेडरूम में हम पैसे को डालते थे हम परिवार इकट्ठे होके दुआ करते थे.
And this was mom and dad were teaching us.
और ये हमारे माता पिता हमें सिखा रहे थे.
And then the son count and take the 10% out of it.
उसने कहा बेटा गिनो और 10 दशमांश को अलग करो.
So sometimes it'll be like a big money going there.
और कभी कभी लग रहा बड़ा पैसा जा रहा है यार.
That was a huge amount.
अरे बड़ा बड़ा
पैसा. So I would say, Mom, where is this money going?
और मैं पूछता था माँ ये पैसा जहाँ कहाँ रहा है?
It's going to church.
चर्च जा रहा है.
The house of God.
प्रभु के घर जा रहा है.
That's a lot of money.
मैंने कहा बहुत पैसा.
But then God began to then mom and dad said, son.
तब माँ बाप मुझसे कहते थे बेटा
दिस बिलोंग्स टू गॉड
ये परमेश्वर का है
दिस इज नॉट फॉर एनीथिंग एल्स दिस इज होली अनटू गॉड
इसके लिए नहीं सिर्फ प्रभु के काम के लिए
दिस इज अ होली थिंग बिफोर
ये पवित्र चीज है.
And I watched it as we grew. We became the blessed people in our town.
और उस जगह पे उस क्षेत्र में वे लोग आशीषित लोग थे.
We were blessed in every area.
सारी बातों में हम आशीषित थे.
Why? Because we saw the hand of God in our life.
क्यों हमने परमेश्वर के हाथ को हमारे जीवन में देखा.
Hallelujah.
Hallelujah.
Church, let me encourage you.
कलीसिया मैं आपको
उत्साहित करना चाहूंगा. You may say, well, pastor's preaching about money because he probably needs money. No, no.
आप बोलेंगे पाई साहब को जरूरत है बोल के दशमांश के बारे में
दादा दे रहे. I want you to be blessed.
मैं चाहता हूं कि आप आशीषित हो.
I want you to be prosperous.
मैं चाहता हूं आप उन्नति करें.
I want everybody in the church ICLC to be having a great life.
मैं चाहता हूं कि ICLC के हर एक परिवार आर्थिक तौर पे समृद्धशाली हो.
When you become faithful,
जब आप ईमानदार हो जाएंगे,
and you're consistently giving,
जब आप निरंतर देंगे,
you will see the blessing God.
आप प्रभु के आशीष को देखेंगे.
Now look at Book of Exodus. We'll finish with this passage.
निर्गमन को देख के हम बंद करेंगे.
Exodus the 13th chapter.
निर्गमन उसका 13 अध्याय.
And in verse 11,
11 से लेके.
And it shall come to pass that the Lord will bring to the land of Canaan.
उस कनान के देश में.
And he will give it to you.
और वो तुम्हें देगा.
And you will set apart to the Lord an open womb and every firstborn that comes.
और जो कुछ भी तुम्हारे पास में पहला उठाएगा, ज़मीन का पहला आएगा, सब तुम देना यहोवा को.
Go to verse 14.
और उसका 14 वचन को जाएंगे.
Let's look at verse 14.
14 वचन को देखिएगा उसमें. 14 वचन.
Can you put that verse 14?
14 वचन को डालिए भाई.
It says, and it shall your son shall and it shall be when your son will ask to you in the time to give. Saying, what is this, or why are you doing it?
और जब आपका पुत्र आपसे पूछे, आप ऐसा ये काम को क्यों कर रहे
हैं? So let me give you what is happening.
और मैं आपसे बताऊं क्या हो
रहा है? In a Jewish home,
यहूदी संस्कृति में,
let's just they use, their wealth was their farm, their goat and their lambs.
और उनकी जो संपत्ति थी, भेड़, बकरियां और खेत थे.
So in the olden days, that's how you know who is rich.
और उस पुराने दिनों में आपके भेड़ बकरियों को देख के लोग पता लगाते थे.
So how many the more sheep you have,
जितना भेड़ ज्यादा है,
is very rich.
आप धनी व्यक्ति
हैं. That's how they calculate it.
और वैसे वो
so God said to the people of Israelite,
और इस्राएलियों के लोगों को,
he said when the first child, first sheep is born,
जब पहला बच्चा पैदा होता है भेड़ का,
you bring it in the house,
प्रभु के घर में लाना,
and you keep it for 10 days,
और 10 दिन तक रखना,
so the children will be attached with the child,
और बच्चे लोग उससे बड़े घुल मिल जाते
हैं, you know, you get a small lamb, every family member is playing with the lamb,
और ऐसा है कि भेड़ आया और सब उस बच्चे को प्यार करने लगे,
but then you will have on that day,
और तब तुम उस दिन में क्या करना,
you take the lamb,
उस भेड़ को लेना,
cut the neck,
उसके गर्दन को काटना,
the blood will come out,
और लहू निकलेगा.
So the child will be watching, dad, what are you doing?
और तब बच्चा देखेगा, daddy, आप कर क्या रहे हैं?
Man, that's a very bad.
ये तो बड़ी बुरी बात है.
I think those child would probably get scared of the dad.
और हो सकता है कि वे बच्चे अपने माँबाप से डर
जाएं. When they see dad cutting the neck,
जब देख रहे हैं बाप भेड़ को काट रहा है.
He said, we don't want to handle dad now.
अब हम इसको देख
रहे हैं. He may chop me too.
वो हम मुझे भी काट डालेगा.
But the dad was teaching that child.
लेकिन बच्चे को ये सिखाया जा रहा था.
He said that I have to offer it to God.
मुझे परमेश्वर को देना है.
So the child will ask him.
और तो बच्चा पूछता था.
What is this, Dad?
ये प्रभु ये क्या है जो आप कर रहे
हो? Why are you doing this?
पिता ये क्या है जो आप कर रहे हो?
And then you must tell them.
और तब तुम उनको ये बोलना.
that when your son asks you saying what is, then you should say to them, by the strength of the hand of the Lord brought us out of the Egypt and out of the house of bondage.
और तब तुम कहना परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथ से तुमको मिस्र से और बंधुआई के देश में से निकाल के लाया.
So this is what he wants you to say.
और वो चाहता है कि आप इस बात को समझें.
You need to tell your child.
आपको अपने बच्चे को कहना है.
Son, why am I sacrificing?
बेटा, मैं इस बलिदान को.
Why am bringing my tithe?
क्यों मैं अपने दशमांश को ला रहा हूँ?
Sit in my lap.
मेरे गोद में.
Let me explain you.
मैं तुमको बताऊंगा.
There was a time I was a very poor man.
एक समय था मैं बहुत गरीब.
I used to be a slave.
मैं गुलाम था.
I was serving somebody.
मैं किसी की.
I had nothing in my life.
मेरे जीवन में.
I came with one suitcase.
मैं एक सूटकेस.
I had nothing in my life.
मैं अपने जीवन.
But God by His strength.
लेकिन परमेश्वर.
But by God His mercy.
वो मेरा बल.
He blessed me.
उसने.
He prospered me. He gave me house. He gave me car. He gave me wealth. He gave me health. And because God gave it to me, son.
इसलिए प्रभु ने
मुझे. Give it to God. He redeemed me. I was a bad sinner. You don't know how bad I was living in sin. I used to be idol worshipper. I was in darkness. You don't know how bad I was. For generation we were slaves. For all generation we were worshipping idols. But one day God by His mercy delivered me, redeemed me, saved me. And therefore, son, I give to God. I offer myself to God. Because God has been good to me. Oh, because God is good to me. His mercy has come in my life. He saved me. He delivered me. He healed me. And therefore I celebrate. Why am I giving to my God?
क्यों मैं दे रहा हूं प्रभु को?
I give him because I love him.
इसलिए मैं देता हूं क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूं.
Because how good God has been.
कितना अच्छा है वो मेरे.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let's all stand together.
I am सब खड़े हो
जाएं. I want you to check your heart.
मैं चाहता हूं अपने जीवन को जांचें.